نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 48 آیت نمبر 121 سے 138 سورة آل عمران. لیسن نمبر 48 آیت نمبر 121 to 138 سورة آل عمران. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ کریں گے. ہمارے سامنے آج کا جو سبق ہے اس کے شروع میں لکھ لیجئے کہ یہاں سے غزوہ احد کے تذکرے شروع ہو رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. ہم سورۃ آل عمران کا جو حصہ پڑھ چکے وہ پڑھ چکے. اب یہاں سے آگے تقریباً 60 آیتیں 60 ورسز جو ہیں یہ غزوہ احد اور اس کے سیکوینسز اس کے حالات کے بارے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی شان ہے کہ پچھلے لوگوں کے واقعات ہمیں سنا کر اپنے لیے عمل کی راہیں لینا سکھاتے ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اہل کتاب کی سازشوں کا چکر تھا اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف دلوں میں عزم اور ارادے رکھتے ہیں کہ ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے. یہاں سے اب اس کی عملی مثالیں شروع ہوتی ہیں. اور یہاں سے یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ سورۃ آل عمران کا سیکنڈ ہاف شروع ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ ہم آدھی سورۃ آل عمران پڑھ چکے ہیں. یہاں سے آگے 6 رکوع ہیں, تقریباً 60 آیتیں بنتی ہیں. یہ مسلسل غزوہ احد کے حالات واقعات اور اس پہ تبصرے ہیں. غزوہ احد کیا تھا؟ سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا. اس سے ایک سال پہلے سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر پیش آ چکا تھا. اس کی تفصیلات سورۃ الانفال میں پڑھیں گے. یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ ترتیب نہیں ہے قرآن میں اس طرح کی کہ پہلے اگر غزوہ بدر ہوئی تھی تو سورۃ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہو, پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوئی تو آج سورۃ آل عمران میں ایسا ہو. ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ ترتیب زمانے اور نزول کے اعتبار سے مختلف طرح سے بدل دی جاتی تھی. لیکن آج ہم بات کریں گے غزوہ احد کے اوپر کہ غزوہ احد جو ہے یہ کیوں ہوئی, کس لیے ہوئی, اس کے پیچھے کچھ خاص وجوہات تھیں. سب سے پہلی بڑی وجہ جو غزوہ احد کی تھی وہ کیا تھی کہ غزوہ بدر میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینے کے لیے. ایک سال پہلے جو جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فتح حاصل ہوئی تھی, کفار کے دلوں میں اس کا بہت گرج تھا, غصہ تھا, تو وہ اس شکست کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے. دوسرا سبب کیا تھا کہ جنگ بدر کے مقتولین یعنی جو ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے تھے ان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تیسری وجہ کیا تھی کہ اپنی بدنامی کو مٹانا چاہتے تھے. برا نام تو نکل ہی آیا تھا نا, پہلی ہی جنگ ہوئی مسلمانوں سے تو اس کے اوپر ہی ان کو پکڑ پڑ گئی اور اس طرح سے ان کے حالات خراب ہو گئے. لہٰذا ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے, کیونکہ غزوہ بدر کوئی پلانڈ جنگ نہیں تھی, ایکسیڈنٹل تھی, اور آپ کہہ لیجئے کہ حالات کا بس ایک پھیر تھا کہ وہ جنگ ہو گئی. بعد میں بہت سارے مخلص صحابہ جن کو موقع نہ مل سکا تھا اور انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا, ان کے دلوں میں ایک بہت زیادہ گلٹ تھا اس بات کا کہ ہم لوگوں نے پہلی ہی جنگ کو مس کر دیا اور اس سے خیر نہیں لے سکے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دل کی تڑپ بہت تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع لے آئے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ اس موقع کو اویل کریں اور اپنی کمی کو پیش کریں. یہ بھی ایک وجہ تھی غزوہ احد کے پیش ہونے میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا تھا جن کو پہلے موقع نہیں ملا. ایک اور وجہ بھی تھی, اور وہ کیا تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو سامان اور جو قافلہ بچ کے چلا گیا تھا مکہ والوں نے وہ سارے کا سارا ڈونیٹ کر دیا تھا کہ ہم اپنا یہ سارا مال جو ہے اب اسلام دشمنی میں استعمال کریں گے. تو اب تیاریاں کر چکے تھے, اس کو آگے لانا چاہتے تھے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر کے معاملات میں آپ کو بتایا تھا کہ جاتے جاتے کچھ اس قسم کے معاملات ہو گئے تھے کہ جس میں اگلے سال جنگ کی بات تھی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونا تھا, एक पूरे साल की तैयारी लिखे, एक साल तैयारी की कुफर ने। खूब सामान पेश किया, जमा किया, सारे का सारा अपना माल जो तिजारती काफले का था उसको डोनेट कर दिया। 1,000 ऊंट और 50,000 दीनार की रकम जमा की। बेशुमार लोगों ने वॉलेंटियरली यानी रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की कि हम जाएंगे अब इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह तमाम कबाइल जो इस्लाम दुश्मन थे इनको लड़ने की दावत दी। सबको कुरैश के झंडे के नीचे जमा किया। फिर एक और काम भी इन लोगों ने किया कि शायरों से मदद ली। शोला बयान, खूबसूरत बातें करने वाले शायरों को बुलाया। हिंद नाम की औरत जो अबू सुफियान की बीवी थी, इनको लीडर बनाया औरतों की जमात का। शेर पढ़ती थी और अपने मर्दों के हौसले बुलंद करती थी। उनके अशार में कुछ वल्गर किस्म के अशार भी थे, लेकिन मुराद क्या था कि वो अपनी तरफ से आने वाले फौजियों को रग़बत दिला रही थी कि अगर तुम इस जंग में जीत गए तो हम अपना हुस्न तुम्हारे सामने पेश करेंगी। एक शेर था जिसका खुलासा क्या था कि अगर पेशकदमी करोगे तो हम गले लगाएंगी और कालीन बिछाएंगी, और अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगी और अलग हो जाएंगी। यानी इस तरह से जैसे आज के दौर में बाज़ दफ़ा मिल्ली नगमों और कौमी तरानों के साथ जोश दिलाया जाता है, इस तरह की सारी कोशिशें करके मक्का वाले तैयार हुए और वो चल पड़े। तकरीबन 3,000 का लश्कर उनके साथ था। बस फिगर्स लिखते जाएं छोटे छोटे, फिर जंग सारी समझ आ जाएगी। तादाद की कसरत भी थी, साजो सामान भी था, और जोश व जज्बा भी था, इंतकाम के जज्बे भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबरें पहुंची। आप बहुत ज़्यादा बेदार मगज़ थे, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हालात पे नज़र रखते थे। और दीनदार होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता, और लावाली, और ऐसा नहीं कि कुछ भी ना पता चले सब लोग कर करा के चले जाएं। नबी सल्लम ने अपने साथियों को जमा किया, मशवरा किया। यहाँ से मशवरे की अहमियत भी पता चलेगी। बताओ क्या करें। साथियों में जो तजुर्बाकार साथी थे यानी जिनके पास पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ऐसा करते हैं कि मदीना में ही हम अपने दरवाजे बंद करके मुदाफ़त करते हैं, यानी डिफेंसिव वॉर करते हैं, ऑफेंसिव नहीं करते। बाहर निकलकर लड़ने में हो सकता है कि मुसलमानों को नुकसान हो क्योंकि कुफार की तैयारी ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मर्ज़ी भी यही थी, लेकिन वो लोग यंगस्टर्स, नौजवान, किसी भी कौम का सरमाया वहाँ के यंगस्टर्स होते हैं जिनको बदर में शामिल होने का मौका ना मिला, उन्होंने कहा नहीं हम तो ये नहीं करते। ये क्या बात है, ये तो बुजदिली है। बाहर निकल कर लड़ेंगे, चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या होता है। ये होता है जवान और बूढ़े खून का फ़र्क। बाहर आल इन्होंने कहा कि हम बाहर चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यंगस्टर्स की बात को मानकर अपनी मर्जी छोड़ दी। दिल आपका भी यही था कि इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि अंदर रह के दिफा करें, लेकिन यंगस्टर्स को खुश करने के लिए आपने कहा कि चलो चलते हैं। 1,000 यानी 1,000 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। मकामे शौत, शीन वाव तो यहाँ तक पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन उबई कौन था, याद है पीछे बात हुई, मुनाफिक था, यानी अभी तक कुफर पे था, लेकिन जब गजवाए बदर में मुसलमानों को बहुत खूबसूरत फतह हुई तो इसको ये समझ आ गया कि मुसलमानों से बाहर रहकर इनको नुकसान नहीं दे सकता, इनके अंदर जाके नुकसान दूंगा। तो बदर के बाद ये मुसलमान हुआ। जब मुसलमान निकले, ये भी निकला, शौत के मुकाम पे रुक गया। 300 लोग यानी 1/3 ऑफ द टोटल आर्मी इसके साथ मिल गई। कहने लगे हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, कहने लगा हमारा भी यही ख्याल था कि शहर में रहकर जंग होनी चाहिए, चूंकि हमारी बात नहीं मानी तो हम नहीं चलते। असल में बुजदिली थी, और मुनाफिकत बंदे को इस तरह के फैसले करने पे मायल करती है। यहाँ ये बात लिख लीजिए कि कि जिन बातों को आज हम पढ़ रहे हैं बड़े आरामदेह माहौल में बैठकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये मुश्किल तरीन दौर थे मदीना में आने के बाद। चारों तरफ से इस्लाम के ऊपर लोगों की नज़रें थी, हर खराबी और खामी उनको इस्लाम में दिखती थी। ऐसे हालात जब भी इस्लाम के होंगे, और आंखें खोलें तो आज भी हैं, तो ऐसे हालात में या तो बंदा मुजाहिद बनेगा, जिहाद करेगा, जान से करे, कलम से करे, तलवार उठानी पड़े तो उससे चढ़े। जो बंदा ऐसे हालात में मुजाहिद नहीं बनता तो वो फिर मुनाफिक बन जाता है। लिख ले, जब इस्लाम को मुसलमानों की ज़रूरत होती है तो अगर कोई इस्लाम के लिए काम नहीं करता, इल्म के ज़रिए, जान के ज़रिए, माल के ज़रिए और इसी तरह से तलवार के ज़रिए, तो मान लीजिए कि वो मुनाफिक होगा। ये निफाक का नुक्ते आगाज़ होता है कि इंसान अपनी जान बचा ले और इस्लाम को ख़तरे में डाल दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चा है ना, तो माँ अपनी जान पे खेल के बच्चे को बचा लेती है, कभी नहीं कहती कि अब ये बच्चा अब छोड़ो मैं बच जाऊँ। बस इस्लाम को भी एक बच्चे की तरह से जब तक नहीं समझेंगे बात नहीं बनेगी। तो अब्दुल्ला बिन उबई निकल गया, इस तरह फैल गया। आप खुद सोचिए, एक मुस्लिम आर्मी का 1/3 अलग हो गया। और यहाँ से एक ज़रा साइड पॉइंट तो लिखिए, नबी का दौर था, बेहतरीन दौर था, उस वक्त भी ऑलमोस्ट निकलने वालों में से 1/3 लोग मुनाफिक थे। कितनी खतरे की बात है। शुक्र करें हम सब के हम अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थे। बाज़ लोग बड़ी आहें भरते हैं कि कभी नबी के दौर में होते ना तो फिर ये होता और वो होता। उस दौर में अगर ये कुछ करते जो आज के मुसलमान कर रहे हैं ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई से कोई नीचे नाम नहीं था होना हमारा। और अगर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आज के दौर में निकल आए, तो जो उस वक्त उनकी इस्लाम के लिए गैरत थी, आज वो इससे कई गुना ज्यादा होती। बहरहाल ये निकला, अल्लाह के नबी ने नहीं रोका। आते हो तो शौक से आओ, जाते हो तो शौक से जाओ, ला इकराहा फिद दीन, नुकसान तुम्हारा अपना है। यहाँ से एक बात ये भी नोट कीजिए कि गलत से गलत सोच रखने वाला बंदा भी अपने साथ एक क्राउड जमा कर लेता है। कभी लोगों के पास भीड़ को देखकर, बहुत रश को देखकर ये ना कहें कि ये बहुत सही होगा, तभी तो इतने लोग आए हैं। आप देखेंगे कयामत के दिन शैतान के साथ बड़े लोग होंगे, औरों की बात आप क्या करते हैं। जब ये निकले तो दो कबीले थे औस और खजरज में, बनू सलमा और बनू हारिसा। इनका भी दिल टूट गया, कहने कि अरे इतने लोग चले गए, फिर ये फिर सही नहीं होगा, हम भी जाते हैं। सोचा उन्होंने कि हम भी वापस जाएं, लेकिन बड़े बड़े सहाबे कराम जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे, उन्होंने जाके उनको समझाया कि अल्लाह के बंदो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अल्लाह ने इतनी दूर से कहाँ से निकाला, अल्लाह के दीन के लिए तुम्हें इस्लाम दिया और अब तुम मुनाफिकों को और बेअमल लोगों को देखकर दीन छोड़ने लगे हो। तो चुनाचे इन लोगों को समझ आ गई कि हम तो पीयर प्रेशर में आ गए थे कि इतने लोग नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करते, तो लिहाजा इन लोगों ने पलटने का इरादा छोड़ दिया। इसका जिक्र आज की आयतों में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी को देखिए, क्या बेदार मगज़ लीडर है, कोई रहे कोई जाए, नबी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक अच्छे लीडर की यही अलामत होती है, कोई है तो है, कोई नहीं है तो ना सही, हम तो हैं। 700 लोगों को लेकर आप चल पड़े। आज का दौर होता तो सोच में पड़ जाते कुछ लीडर्स कि चलो फिर लोग ऐसे नहीं साथ दे रहे तो फिर छुट्टी ना कर दें, फिर ये काम ना छोड़ दें। नहीं, अब गए ओहद के दरमियान में। ओहद एक पहाड़ है मदीना से थोड़े से फासले पे, तकरीबन 4 मील के फासले पे मदीना से ये एक पहाड़ है। अल्लाह के नबी सल्लम ने वहाँ जाके स्टॉप ओवर लिया, स्टे किया, और वहाँ जाकर फिर आपने अपने लोगों को जमा किया, उनको वहाँ जाके एक खूबसूरत तरतीब के साथ रखा, उनकी जगह मुकर्रर की, जिसका तذکرہ भी हम आयत के साथ भी सुनेंगे कि कितनी ज़रूरत होती है अच्छी प्लानिंग की। कि यहाँ आके जो आपकी कुर्सियाँ ठीक कराई जाती हैं, खाली जगह फिल अप कर लें, दिस एंड दैट, ये सारा इसी सुन्नत तरीके से सीखा जाता है, क्योंकि जब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती तो बात नहीं बनती। अल्लाह के नबी ने इतने खूबसूरत तरीके से अपनी आर्मी को नॉमिनेट किया, उनकी जगहों को रखा, आप इधर आप इधर, कि वो सिर्फ 700 और मुकाबले में कितने 3,000 कितने गुना ज्यादा है मुसलमानों से? वो ऑलमोस्ट 4, बल्कि उससे भी ज्यादा, 4 टाइम बिगर आर्मी। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ 700 को यूं फैला दिया कि आप अपने माइंड से देख रहे थे कि किधर से दुश्मन के हमला करने के खतरे हैं। थोड़े इधर इधर करके, राइट साइड लेफ्ट साइड पे करके, एक जगह ऐसी थी पीछे, आपने ओहद पहाड़ को अपने लिए एक सपोर्ट बना लिया। आपको नक्शा दिखाएंगे इंशाल्लाह जब भी मुमकिन होगा। पीछे से दुश्मन आ ही नहीं सकता था, फ्रंट से आना है, लोगों को बिठाया। एक इतनी सी जगह खाली थी, यानी दो पहाड़ों के बीच में प्लेन जगह। वो एक ऐसी जगह थी, छोटा सा टीला था, कि अगर दुश्मन पहाड़ के पीछे से नहीं आ सकता, लेकिन वो उस खाली जगह से आ सकता था। यानी मोस्ट पॉसिबल था कि दुश्मन सामने से ना आए, बल्कि छुप छुपा के पहाड़ के पीछे से होता हुआ इस छोटी सी रॉक के ऊपर से आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लम को ये बात पहले से पता थी। अगर आप इंशाल्लाह रहबरे कामिल बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें नबी सल्लम एज अ जर्नैल पढ़ के देखिए, दुनिया के बेहतरीन जर्नैल थे, कि जिन्होंने अपनी हिकमत अमली से कम खून बहा के, कम से कम तलवारें उठाकर इतना बड़ा इनकलाब दुनिया में पैदा कर दिया। इसीलिए आज उनको पैगम्बरे इनकलाब कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ द रेवोल्यूशन। लिहाजा आपने 50, यानी आप देखिए कि इतने थोड़े लोग थे, लेकिन उनमें से भी आपने 50 लोगों को कहा कि तुम सब इस जगह पे आ जाओ। और एक शख्स अब्दुल्ला बिन जुबैर साहबी को उनका लीडर बना दिया। यहाँ से फिर अमल की बातें, जब भी वाक्यात पढ़े ना तो साथ ही अपने नोट्स में एक साइड पे कॉलम लिख के अमल की बातों में ये छोटी बातें नोट करते जाया करें, तो सीरत इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी। अब आपने उनको रखा, अब सुनिए कि 50 लोग रखे, एक शख्स लीडर है, लीडर्स के बगैर लोग काम नहीं करते। खैर क्या हुआ, आपने उनको इंस्ट्रक्शंस क्या दी? किसी को इस तरफ से आने ना देना, नंबर दो, किसी हाल में यहां से हटना नहीं तुमने। ये मैदाने जाएंगे, आप इमेजिनेशन में ले आए, ठीक है। आपने उनको कहा कि तुम देखो कि परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे हैं, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, ना हमारी मदद के लिए ना किसी और काम से, जब तक कि मैं तुम्हें ना कह दूं। खैर साहबा ने सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मानते थे, जो कहा किया, जंग शुरू हो गई। अल्लाह के नबी की स्ट्रेटेजीज और आपका इस तरह से करना इतना फायदेमंद हुआ कि शुरू में ही मुसलमानों ने दुश्मन को डिफीट दे दी। मुसलमान बिल्कुल पल्ला भारी, और दुश्मन जो थे वो भागने लगे, सर पे पांव रख के भागने लगे। उनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम किधर जाएं किधर जाएं। बिल आखिर दुश्मन को ये लगा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, और उन्होंने जो ही भागना शुरू किया, अपेरेंटली जंग खत्म हो गई। दुश्मन का जंग का मैदान छोड़ना क्या है? उसकी शिकस्त का मानना है। जो ही उन्होंने जंग का मैदान छोड़ा तो सहाबाए कराम ये समझे कि जंग खत्म, और जंग खत्म है तो दुश्मन का छोड़ा हुआ जो माल होता है, जिसको वॉर बूटी कहते हैं आज के दौर में, माले गनीमत कहते हैं, उसको जमा करना शुरू कर दिया। अब जब ये जमा करने के लिए शुरू हुए तो सारे वो, अब देखिए ना, 50 को निकाल दें, पीछे 650 लोग तो थे, वो सब जब ये काम करने लगे तो ये 50 लोग क्या समझे? इनकी इज्तिहादी गलती, इज्तिहादी समझते हैं, यानी ह्यूमन एरर था, उनकी नीयत गलत नहीं थी। लेकिन मैदान जंग में तलवारें नेजे, दुश्मन जब भागते हैं तो अपनी चीजें सारी छोड़ जाते हैं, वो मुसलमानों के अंदर जो लड़ते थे उनके अंदर बांट दी जाती थी। इन्होंने सोचा कि जंग खत्म, सिर्फ एक नसीहत नबी सल्लम की भूल गए, सिर्फ ओनली वन थिंग दे फॉरगेट, और वो क्या थी कि शिकस्त हो के फतह हो, तुमने जगह नहीं छोड़नी, दुश्मन हमारी बोटियां नोच लें, हम फतह पे हैं, हम जो भी हैं, तुमने जगह नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि माल दिख गया था, और जब माल दिखता है तो बंदे को लीडर्स के हुक्म भूल जाते हैं, माल दिखे या कोई फायदा दिखे। जो ही वो सहाबाए कराम के 50 लोगों में से, कहते हैं कि तकरीबन 40, यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद है लीडर वहां, उनके साथ 7 से 10 लोग रह गए, बाकी सब भी आके मैदान जंग में आए और माले गनीमत लूटने लगे। अब ये दर्रा खाली हो गया ऑलमोस्ट। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो, जो अभी उस वक्त तक मुस्लिम नहीं हुए थे, वो भी बहुत बड़े लीडर थे, पहले कुफर की तरफ से आते थे तो कुफर को फायदा देते थे, बाद में जब इस्लाम की तरफ आए तो क्या कुछ हुआ, इनके ऊपर एक पूरा लेक्चर है, सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। इन्होंने देख लिया कि दर्रा खाली है, वापस जाती हुई अपनी सारी आर्मी जो इधर उधर थी उसको यूनाइट किया पहाड़ के पीछे से लाके, अचानक दर्रे के रास्ते दोबारा हमला कर दिया मुसलमानों पे। मुसलमान तो माल जमा कर रहे थे, उनका तो ख्याल था जंग खत्म हुई, दर्रा खाली हो चुका था। अब जब वो वापस आए, मुसलमान तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, बस मैदान का पानसा बदल गया, जीती हुई जंग हार गए। और वो क्यों हुआ, आयतों के अंदर आप पढ़ेंगे। इस दौरान पहले हिस्से में मुसलमान फतह जापते, और ये नोट कर लें, नबी सल्लम की जिंदगी में जितनी भी जंगें हुई, 60-70 के करीब जंगें हैं, एक पूरा लेक्चर है जिसमें गजवात का सरायात है, छोटी जंगें थी बड़ी, सिर्फ और सिर्फ गजवे ओहद में ये आखिरी हल्ले में मुसलमानों को शिकस्त हुई। नबी सल्लम की जिंदगी में जितनी जंगें मुसलमान लड़ने गए, हर एक मुसलमानों को फतह होती थी। और होता क्या था मुसलमानों के पास, टूटी हुई तलवारें, लकड़ियों पे कपड़े बांध के लोगों को तलवार बना के अल्लाह के नबी पकड़ाते थे, लेकिन मुसलमान जीतते थे, क्योंकि पीछे ईमान था, पीछे जज्बा था, नबी की इताअत थी, 5 वक्त के नमाजी थे, माल की मोहब्बत के चूर नहीं थे। सिर्फ गजवे ओहद में इस मौके पे ऐसी भगदड़ मची कि अल्लाह के नबी पुकार रहे हैं। आप पढ़ेंगे आयतें, कल के सबक में आएंगी इंशाल्लाह, कि अल्लाह का नबी पुकार रहे हो, अल्लाह के बंदो कम इन मेरी तरफ आओ। लेकिन उस रात नबी सल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हुआ, और आपके सर पे एक कैप होती थी आयरन की, हौद बोलते हैं उसको, उसके नीचे छोटी छोटी संगलियां लटक रही होती हैं, और पहले दौर में इसी तरह से दिफा करते थे ना, पूरा एक आयरन ड्रेस होता था जिसको जिरा कहते हैं, वो पहनी होती थी, और ताकि अगर कोई तलवार मारे या तीर हो तो जिस्म पे ना लगे। इसी तरह सर के लिए टोपी सी बन के उसके नीचे चेन्स थी जो गर्दन तक आती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक टूटा, हौद की कुछ कड़ियाँ इसमें लग गईं, और कुमा नाम का एक शख्स था उसने आपको मारा। ये सारे नाम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह सीरत, जब आप अपने सामने बुक खोल के पढ़ेंगे तो ये नाम मिलेंगे। इस वक्त सिर्फ ये देखिए कि सिर्फ एक नाफरमानी नबी की जिसने मुसलमानों को इतनी तकलीफ दी, मुसलमान संभल ना चुके, लेकिन बिल आखिर जब मुसलमानों को होश आया, क्या हुआ, दोबारा होश आ गई। मजे की बात देखिए कि अब क्या हो सकता था, कि अब काफिर जीत जाते, हो तो ये क्या, लेकिन ये फिर भी नहीं हुआ। वक्ती तौर पे बीच में जिसको आप कहते हैं ना, एक हुलारा सा आया और मुसलमान दबे, उसमें तकलीफ हुई, सहाबा में से 70 सहाबा कराम शहीद हो गए, जिसमें नबी सल्लम के अपने सगे चचा हजरत हमजा शहीद हुए। इतना ज्यादा मुसलमानों के लिए बड़ा सदमा था कि इब्तदा में इतनी तकलीफ हो लेनी पड़ी, खुद अल्लाह का नबी जो है वो जख्मी हो गया। तो ये आयतें आप देखेंगे कि इसमें उतरी कि अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन दुश्मन के दिल पे बाद में भी इतना रो पड़ गया कि वो भाग गए। अबू सुफियान लीडर थे कुफार की तरफ से, वो चाहते तो उस वक्त मुसलमानों को जहां छोड़ते मदीना शहर पे हमला करके जाके शहर फतह करते, लेकिन अल्लाह कुफर की वजह से अकल मार देता है, ये भी याद रखिए। शिर्क जहां आ जाएगा ना, अकल मारी जाएगी। दुनिया के लिए तो बंदा इतना इंटेलेक्चुअल होगा कि 2 जमा 2 को 4 नहीं बल्कि 22 करेगा, ऐसे पैसा कमाएगा, लेकिन उसको ये याद नहीं रहेगा कि अल्लाह एक है और गॉड इज वन। उसको सब के आगे झुकना आसान लगता है, अल्लाह के आगे झुकना आसान नहीं लगता। ये चीज़ हम सारी सीखते हैं, तो आइए देखते हैं कि अब इन आयतों के साथ हमारे साथ क्या है। और इस्लाम का मिजाज भी समझ लीजिए, इस्लाम लोगों को शाबाशियां देना, वाह वाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, तमगा दे दो, मेडल दे दो, ट्रॉफी दे दो, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। जो अल्लाह के लिए कोई काम करता है ना, बस हल्की फुल्की सी उनकी तारीफ और मोटिवेशन और कीजिए, और जजाक अल्लाह खैर वाहसन जजा, आगे चलिए। कुछ लोग होते हैं जो दीन का काम जो होते हैं ना, वो थपकियां लेने के लिए करते हैं, वाह हमारा नाम हो, हमें मेंशन किया जाए, हमें आगे लाया जाए, हमें किया जाए। ऐसे लोगों को फिर इस्लाम की तरफ आकर कोई खुशी कोई नहीं होती, कहते इन्होंने तो हमें भी सबके बराबर ही कर दिया, इनको तो पता ही नहीं कि हमारे अंदर इतनी स्किल्स हैं, और फलां ऐसा है और फलां ऐसा है, उसको भी मेरे बराबर कर दिया, मेरे अंदर तो खूबियां इतनी थी, यहाँ आके तो मैं पीछे हो गई। इस पूरे किस्से में हमें ऐसे लोगों की कहानियां मिलेंगी। निफाक दिलों में था, ऊपर से सोचा था कुछ दीन का काम करते हैं, और उस काम करने के बाद हमारी वाह वाह हो जाएगी और अल्लाह के नबी हमें यूं ऊपर कुर्सियों पे बिठा देंगे। वो ना हुआ तो इन्होंने क्या फितने फैलाए। आप इंशाल्लाह इसमें देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह मुसलमानों को इस पे आज के हालात में भी तैयार करता है, कि देखो कहते हैं ना, अपनी ही पीठ ना थपकाओ बल्कि काम करो काम करो काम करो। और इस तरह से आप देखिए कि मुसलमान उस वक्त में ये काम कर करा के बिल आखिर मैच ड्रॉ हो गया, कुफार भाग गया एंड पे, फिर आप कह लीजिए कि गज़वे अहद का रिजल्ट क्या हुआ? ड्रॉ, बस न तुम जीते ना हम हारे। हाँ, वक्ती तौर पे मुसलमानों को तकलीफ हुई और उसकी वजह से मुसलमानों को मुश्किल का सामना हुआ। जो फतह वो हासिल कर सकते थे कुफार वो नहीं की, और जो नुकसान मुसलमानों का हो सकता था उतना नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल यह है कि ये एक बहुत तकलीफ का वक्त था। आइए अब देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें क्या देते हैं। ये तो उनकी बातें थी ना, और कहानी सुनने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन आइए ज़रा देखें कि आज हम क्या कर रहे हैं।